लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा फ्रांसिस के प्रति हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर अनुग्रह मिंच। सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में 21 अप्रैल को वैटिकन स्थित संत मर्था प्रेरितिक आवास में निधन हो गया था। वे रोमी कैथोलिक कलीसिया का नेतृत्व करने वाले पहले लातिनी अमरीकी संत पापा थे, जो 13 मार्च 2013 को पोप बेनेडिक्ट 16वें के बाद कलीसिया के परमाध्यक्ष पद पर आसीन हुए थे। भारतीय सरकार की वेबसाइट पर प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय प्रतिनिधिमंडल सहित 26 अप्रैल के लिए निर्धारित संत पापा फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वैटिकन सिटी के लिए शुक्रवार को रवाना हुई। विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति महोदया वैटिकन की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। 25 अप्रैल को वे वैटिकन सिटी स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर में पुष्पांजलि अर्पित कर संत पापा फ्रांसिस के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और 26 अप्रैल को तमाम विश्व के गणमान्य व्यक्तियों के साथ संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में दिवंगत संत पापा फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन तथा गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा भी वैटिकन आए हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार परम पावन संत पापा फ्रांसिस को संपूर्ण विश्व के लाखों लोग करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक रूप में याद करेंगे। इसी बीच भारत ने गुरुवार को घोषणा की कि संत पापा फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के सम्मान में 26 अप्रैल को राजकीय शोक मनाया जाएगा। रोम स्थित मरियम महागिरजाघर में संत पापा फ्रांसिस की कब्र को इटली के लिगुरिया प्रांत के संगमरमर से निर्मित किया गया है। यह एक साधारण कब्र है जिस पर केवल फ्रांसिस्कुस लिखा हुआ है और दिवंगत संत पापा के वक्ष पर धारित क्रूस की ही प्रतिकृति है। सालुस पॉपुली रोमानी आराधनालय और स्फोर्सा आराधनालय के बीच पार्श नेव के आला में स्थित है। महागिरजाघर के सह प्रधान पुरोहित कार्डिनल रोलांडिस मकरिकास ने संत पापा फ्रांसिस की इच्छा की घोषणा करते हुए बताया कि उन्हें अपने दादा दादी की भूमि लिगुरिया के पत्थर से बने मकबरे में दफनाया जाए। छोटे से शहर कोगोर्नो में एक महीन दाने वाली ग्रे, हरी और नीली रूपांतरित चट्टान से बनी स्लेट की एक पट्टिका पापा बेर्गोलियो के परदादा विंचेंसो सिवोरी की याद में बनाई गई है। 1800 के दशक में सिवोरी इटली से अर्जेंटीना आए थे। वहां उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया, जिसमें उनकी पोती रेजिना मरिया सिवोरी भी शामिल थी, जो संत पापा फ्रांसिस की माँ थी। संत पापा फ्रांसिस लिगुरिया से अपने संबंधों को प्रायः निजी रखा करते थे, इसलिए शहर की महापौर एनरिका सोमारीवा आश्चर्यचकित हुई जब उन्होंने सुना कि संत पापा ने अपने दादा दादी के क्षेत्र से अपनी कब्र के लिए पत्थर की अभिलाषा रखी है। कोगोर्नो में अभी भी रहने वाली एंजेला सिवोरी ने उस पल को याद किया जब उन्हें पता चला कि वह संत पापा फ्रांसिस की चचेरी बहन है। उन्होंने बोयनस आयरस से एक फोन कॉल और ईमेल के माध्यम से वंशावली वृक्ष प्राप्त करने का वर्णन किया। उन्होंने और उनकी बेटी क्रिस्टीना ने कहा कि कब्र के लिए पत्थर के बारे में संत पापा का अनुरोध परिवार के लिए एक अद्भुत उपहार था, एक अंतिम आश्चर्य। मई 2017 में संत पापा फ्रांसिस ने जेनोवा में अपने परिजनों से मुलाकात की थी। क्रिस्टीना ने याद किया कि उस समय उनकी मां 87 वर्ष की थीं और उन्हें आखिरी क्षण तक संत पापा फ्रांसिस से मुलाकात का कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने बताया, हमें वैटिकन से एक कॉल आया, हम 7 लोग एक साथ आए और उन्होंने हमारा स्वागत ऐसे किया जैसे कोई चचेरा भाई हो जो दुनिया के अंतिम छोर से आया हो। मुलाकात के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने अपने चचेरे भाइयों से हाथ मिलाया, मुस्कुराए और कहा, आखिरकार मैं सिवोरिस परिवार से मिल रहा हूं। लिगुरिया प्रांत की पहाड़ियों में स्थित 18 खदानों और यहां कार्यरत 12 कंपनियों के अध्यक्ष फ्रांका गार्बेनो ने संत पापा की कब्र के पत्थर के बारे में कहा कि यह कोई महान पत्थर नहीं है बल्कि लोगों का पत्थर है। उन्होंने कहा कि जिले ने पहले ही पट्टिका बनाने पर सहमति दे दी है जो संत पापा फ्रांसिस के साथ उनके शाश्वत विश्राम में रहेंगे। गौरतलब है कि संत पापा फ्रांसिस से पहले लिगुरिया प्रांत के कोगोर्नो शहर का संबंध संत पापा इनोसेंट चतुर्थ और संत पापा एड्रियन पंचम से रहा है। और इसी बीच रोम में उपस्थित 113 कार्डिनलों ने गुरुवार प्रातः अपनी तीसरी आम सभा में भाग लिया और घोषणा की कि कौन नवीन संत पापा के चुनाव से पहले दो पूर्व सम्मेलनों में चिंतन प्रस्तुत करेगा। वैटिकन स्थित परमधर्म पीठीय प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने गुरुवार को पत्रकारों को कार्डिनलों की तीसरी आम सभा पर आलोकित किया। उन्होंने कहा कि नए धर्म सभा हॉल में सभा के लिए 113 कार्डिनल मौजूद थे जो सुबह 9 बजे प्रार्थना के साथ शुरू हुई और आधे घंटे के ब्रेक सहित दोपहर 12 बजे समाप्त हो गई। उन्होंने बताया कि जिन कार्डिनलों ने अभी तक ऐसा नहीं किया था उन्होंने प्रेरितिक संविधान यूनिवर्सी डोमिनिची ग्रेजिस के अनुसार शपथ ली। परमधर्म पीठीय प्रेस कार्यालय के निदेशक ने बताया कि कार्डिनलों ने निर्णय लिया कि कार्डिनल केविन फेरेल के स्थान पर कार्डिनल विक्टर मैनुअल फर्नांडिस नोवेम दियालेस के छठे दिन ख्रिस्त्याग की अध्यक्षता करेंगे। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि रोम के संत पॉल महागिरजाघर के प्रधान पुरोहित फादर डोनातो ओल्गियरी ओएसबी सोमवार को पहला चिंतन प्रस्तुत करेंगे और परमधर्म पीठीय निवास के पूर्व प्रवचनकर्ता कार्डिनल रानियेरो कंतला मेस्सा सम्मेलन की शुरुआत में दूसरा चिंतन प्रस्तुत करेंगे जिसकी तिथि अभी भी तय नहीं की गई है। निदेशक ब्रूनी ने बताया कि इसके अतिरिक्त कार्डिनलों ने यूनिवर्सी डोमिनिची ग्रेजिस के पैरा 1 से 23 तक पढ़े और फिर कलीसिया और विश्व के बारे में बातचीत शुरू की। उन्होंने यह भी बताया कि अगला आम सम्मेलन शुक्रवार सुबह 9 बजे होगा। उन्होंने बताया कि गुरुवार को दोपहर 1 बजे तक 61,000 लोग दिवंगत संत पापा फ्रांसिस को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। शनिवार को संत पापा फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के बाद कलीसिया की लोकोपकारी और धर्मार्थ गतिविधियों के कई प्राप्तकर्ता उनके ताबूत का स्वागत करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु रोम के मरियम महागिरजाघर की सीढ़ियों पर खड़े होंगे। परमधर्म पीठीय प्रेस के बयान के अनुसार यह पहल याद दिलाती है कि गरीबों के लिए ईश्वर के दिल में एक विशेष स्थान है और संत पापा फ्रांसिस की कलीसियाई सेवा और प्रेरिताई को याद करने का प्रयास करती है जिन्होंने फ्रांसिस नाम इसलिए चुना था ताकि गरीबों और हाशिए पर जीवन यापन करने वालों को कभी भी भुलाया न जाए।
तुझे चाहता रक्षक गढ़ मेरा।
श्री ब्रूनी ने बताया कि शनिवार 26 अप्रैल को रात 9 बजे मरियम महागिरजाघर के प्रांगण में रोजरी माला विनती का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि संत पापा फ्रांसिस के अंत्येष्टि संस्कार की धर्म विधि निज तौर पर होगी। रविवार 27 अप्रैल की सुबह से श्रद्धालु मरियम महागिरजाघर में संत पापा फ्रांसिस की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। रोम स्थित मरियम महागिरजाघर में गुरुवार की शाम फिलीपींस के कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले ने दिवंगत संत पापा फ्रांसिस की याद में रोजरी माला विनती के पाठ का नेतृत्व किया। यह प्रार्थना उस महागिरजाघर में संपन्न हुई जहां शनिवार 26 अप्रैल को संत पापा फ्रांसिस की अंत्येष्टि धर्म विधि और दफन क्रिया संपन्न होगी। रोजरी का नेतृत्व करने से पहले कार्डिनल तागले ने दिन के लिए निर्धारित सुसमाचार पाठ से पुनर्जीवित येसु के उन शब्दों को याद किया जब वे अपने शिष्यों के बीच प्रकट हुए थे, जो उनके दुर्भोग की घटनाओं के बाद गहन सदमे में थे। येसु उनसे कहते हैं, तुम क्यों परेशान हो और तुम्हारे दिलों में सवाल क्यों उठ रहे हैं? कार्डिनल तागले ने कहा, येसु ने उन्हें प्रोत्साहित किया और धर्मशास्त्र की व्याख्या करके उनके हृदयों को उदार बनाने में उनकी मदद की, ताकि वे मृत्यु के भय से मुक्त हो सकें। उन्होंने कहा, पुनर्जीवित मसीह के ये शब्द हम में से प्रत्येक को हमारे जीवन में आशा और निश्चितता प्रदान करने के लिए संबोधित हैं, क्योंकि हमारे गुरु और प्रभु हमें जीवन देने आए हैं, एक ऐसा जीवन जिसका कोई अंत नहीं होगा। अंत में कार्डिनल तागले ने विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इसी भावना के साथ हम हमारे प्रिय संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें। उन्हें पवित्र कुमारी मरियम सालुस पॉपुली रोमानी के कोमल हाथों के सिपुर्द करें और स्वर्ग के द्वार मरियम हमारे लिए प्रार्थना करें।
धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा परम विशाल सभा में तुझको धन्यवाद दूंगा भगवान, जन समूह के बीच करूंगा प्रभुवर मैं तेरा गुणगान, प्रभुवर मैं तेरा गुणगान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद।
संत पापा फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के बाद शनिवार 26 अप्रैल को जरूरतमंद लोगों का एक समूह दिवंगत संत पापा को उनके ताबूत में दफनाने से पहले अंतिम विदाई देने के लिए महागिरजाघर की सीढ़ियों पर मौजूद रहेगा। इतालवी कैथलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन में धर्मार्थ कार्यों के निदेशक धर्माध्यक्ष बेनोनी अम्बरस ने बताया कि ये लोग लगभग 40 होंगे और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक सफेद गुलाब होगा। उन्होंने कहा, रेबिबिया में पवित्र द्वार के खुलने पर कैदियों से भी मुलाकात की जाएगी। यह एक मार्मिक निर्णय है, क्योंकि संत पापा फ्रांसिस का स्वागत मां मरियम द्वारा किया जाएगा, जिन्हें वे बहुत प्यार करते थे, तथा उनके करीबी गरीब बच्चे भी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उन्होंने कहा, समाज के अंतिम लोगों के लिए इस बार अंतिम होना सौभाग्य की बात होगी। संत पापा की इच्छा के अनुसार संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में अंतिम संस्कार के बाद ताबूत को दफनाने से पहले निर्धन, बेघर, कैदी, ट्रांसजेंडर लोग, आप्रवासी सभी लोग दिवंगत संत पापा को अलविदा कहेंगे, लेकिन सबसे बढ़कर वे उन संत पापा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करेंगे जो उनमें से कई लोगों के लिए पिता सदृश थे। समाज के अंतिम और परित्यक्त व्यक्तियों की उपस्थिति का समाचार परम धर्म पीठ की ओर से जारी एक बयान में घोषित किया गया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि गरीबों को ईश्वर के हृदय में विशेष स्थान प्राप्त है, साथ ही संत पापा फ्रांसिस के हृदय और उनकी धर्म शिक्षा में भी, जिन्होंने फ्रांसिस नाम इसलिए चुना ताकि वे उन्हें कभी न भूलें। वैटिकन मीडिया को विवरण प्रदान करने वाले व्यक्ति धर्माध्यक्ष बेनोनी अम्बरस वही धर्माधिकारी हैं जो 26 दिसंबर को संत पापा फ्रांसिस के साथ उनके सबसे प्रतीकात्मक संकेतों में से एक अर्थात रोम के रेबिबिया जेल में पवित्र द्वार के उद्घाटन हेतु मौजूद थे। धर्माधीश अम्बरस ने बताया कि यह विचार स्वयं उन्हें और परम धर्म पीठीय धर्म विधिक समारोहों के अध्यक्ष मान्यवर डिएगो रवेली के बीच संपर्क के बाद आया, जिसका उद्देश्य संत पापा फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में किसी तरीके से समाज के हाशिए पर जीवन यापन करने वालों की उपस्थिति के मूल्य को उजागर करना था। आदर्श रूप से ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके सभी प्रियजन उनके अंतिम कदमों में उनके साथ थे। धर्मादेश बेनोनी कहते हैं कि ये कई लोगों की कई कहानियां हैं जिन्हें अन्य बातों के अलावा इन वर्षों में फ्रांसिस से मिलने का अवसर मिला। अस्तु उन्होंने कहा, ये जरूरतमंद लोग सिर्फ अलविदा कहने ही नहीं जा रहे हैं बल्कि धन्यवाद कहने भी। वे सभी एक सफेद गुलाब के साथ उनका स्वागत करेंगे और सफेद गुलाब घर में स्वागत करने का एक तरीका है क्योंकि वे पिता के घर जा रहे हैं और यह गुलाब आपके द्वारा हमारे लिए किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद कहने और आपके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक तरीका है।
धन्यवाद दूंगा भगवान।
श्रोताओं, फादर अर्तुरो सोसा येसु समाजियों के सुपीरियर जनरल संत पापा फ्रांसिस के जीवन और विरासत को याद करते हैं, अपने भाई जेसुइट की प्रार्थना और संवाद के प्रति समर्पण को याद करते हैं। लंबे जीवन और जिम्मेदारियों वाले व्यक्ति के कई पहलुओं में से मैं संत पापा फ्रांसिस के ईश्वर के व्यक्ति के आयाम को उजागर करना चाहूंगा। जेसुइट सुपीरियर जनरल फादर आर्तुरो सोसा एसचे ने गुरुवार 24 अप्रैल को वाटिकन के पास स्थित जेसुइट कुरिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिवंगत संत पापा के जीवन का सारांश प्रस्तुत किया। उन्होंने अर्जेंटीना में जन्मे जेसुइट संत पापा के लिए सोसाइटी ऑफ जीसस की कृतज्ञ स्मृति व्यक्त की। लोगों के प्रति उनका दृष्टिकोण और प्रत्येक संदर्भ में उनकी गहराई को उनके आध्यात्मिक अनुभव की मान्यता से ही समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दिवंगत संत पापा ने हमेशा ईश्वर की इच्छा को अमल में लाने की कोशिश की ताकि वे मानवता के परिवर्तन में योगदान दे सकें और इस दुनिया को सभी मनुष्यों के लिए एक योग्य घर बना सकें। फादर सोसा ने कहा कि संत पापा ने अपने प्रदर्शन को अन्य लोगों के मानकों से मापने की कोशिश नहीं की बल्कि केवल येसु के सुसमाचार को आत्मसात करने और सभी लोगों को संत बनने के लिए आमंत्रित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण बात एक दूसरे को सुनना, वास्तविकता की जटिलता के साथ संवाद करना, समय के संकेतों की जांच करना और प्रार्थना में अपने प्रभु के साथ परिचित होना, किसी भी क्षण में सबसे उपयुक्त क्या है यह समझना है। दिवंगत संत पापा ने सपना देखा था कि सभी लोग एक सम्मानजनक जीवन जी सकें और दुनिया वास्तव में एक आम घर हो जिसमें सब भाई बहनों की तरह रह सकें। फादर सोसा ने कहा कि संत पापा एक ऐसे व्यक्ति थे जो जानते थे कि मानव जटिलता पर ईश्वर की दयालु दृष्टि कैसे प्राप्त की जाए और उन्होंने आम जीवन हेतु अधिक से अधिक स्थान खोलने के लिए अपना जीवन दिया। अंत में जेसुइट सुपीरियर जनरल ने याद दिलाया कि संत पापा फ्रांसिस के उत्तराधिकारी के रूप में कोई भी चुना जाए, येसु समाजी संत पापा के प्रति आज्ञाकारिता के अपने चौथे व्रत को ईमानदारी से पूरा करेंगे। और गाजा सिटी में पौत्र परिवार पल्ली के पल्ली पुरोहित ने वाटिकन न्यूज को बताया कि संत पापा ने अपनी मृत्यु के दो दिन पहले परिसर में शरण लिए क्रिस्तीय समुदाय के प्रति अपनी अंतिम निकटता दिखाई। उन्होंने कहा, संत पापा ने हमें आखिरी बार शनिवार शाम को पास्का जागरण शुरू होने से ठीक पहले फोन किया। उन्होंने बताया कि वे हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया और हमारी प्रार्थनाओं के लिए हमें धन्यवाद दिया। फादर रोमानेली ने कहा, आइए हम प्रभु से संत पापा को अनंत विश्राम प्रदान करने के लिए कहें और आइए हम प्रार्थना करें कि दुनिया भर के उदार पुरुष और महिलाएं गाजा और दुनिया में शांति के लिए उनकी निरंतर और तत्काल अपीलों पर ध्यान दें। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।